नमस्कार आदाब दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटने का वक्त आ गया है क्योंकि आज मोबाइल वाणी के क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में इतिहास की पढ़ाई का दिन आ गया है। तो देर किस बात की, चलिए सुनते हैं कि आपके पसंदीदा शिक्षक क्या खास बता रहे हैं आज।
मैं रामबोध कुमार, प्लस टू विद्यालय नगर नौसा में इतिहास शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। आज हम बच्चों के बीच मध्यकालीन भारत से संबंधित यात्रा विवरणों में भारतीय समाज की दशा एवं दिशा के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, भारत में समय समय पर विभिन्न देशों से अनेक यात्री आए। इन लोगों ने अपने यात्रा विवरण लिख छोड़े हैं जिनसे तत्कालीन व्यवस्था और समाज पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। संभवतः यात्रियों में महिलाएं भी थी, परंतु उनके विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में विभिन्न विषयों का उल्लेख किया है। इनमें से अनेक ने भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की और कुछ ने स्थान विशेष पर रहकर ही भारत के विषय में अपने अनुभव लिखे। भारत आने वाले महत्वपूर्ण यात्रियों में मेघास्थनीज, फायान, फेनसांग, अरवेनु, इब्न बतूता और फ्रांसिस बर्नियन के नाम विशेष रूप से उल्लेख है। इनमें अलवरनु, इब्न बतूता और फ्रांसिस बर्नियन मध्यकालीन भारत में आए थे। तीनों यात्रियों के यात्रा वृत्तांत में सबसे महत्वपूर्ण अलवरनी का माना जाता है। अलवरनी की दो महत्वपूर्ण पुस्तक किताबुल हिंद और तहकीके हिंद है। इनमें किताबुल हिंद में भारत का स्पष्ट रूप से विवरण संबंधित है। अलवरनु अपनी यात्रा वृत्तांत के दौरान भारत के सामाजिक व्यवस्थाओं का विशेष रूप से अध्ययन एवं वर्णन किया है। अलवरनु ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भारत से संबंधित विविध विषयों का उल्लेख किया है, विशेषकर हिंदुओं की समाज व्यवस्था का। वह इस देश से अपरिचित था, इसलिए यहाँ की व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना उसके लिए सहज नहीं था। उसका मानना था कि हिंदुओं भारतीयों की स्थिति मुसलमानों से भिन्न थी। हिंदुओं की स्थिति अध्ययन करने में अनेक तत्व बाधक थे। सबसे पहली कठिनाइयां हिंदुओं की भाषा संस्कृत थी। दोनों समुदाय को एक दूसरे से अलग रखने में संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान था। हिंदी भाषा का अत्यंत जटिल थी। हिंदू इस भाषा पर का व्यवहार करते थे, परंतु मुसलमान इससे अनभिज्ञ थे। अरबी भाषा के समान विस्तृत होते हुए भी इसमें अनेक कठिनाइयां थी जिन्हें समझे बिना सही स्थिति की जानकारी नहीं मिल सकती थी। शब्दों को सही अर्थ को समझने में ये कठिनाइयां इसलिए भी उत्पन्न होती थी क्योंकि मूल पांडुलिपियों की नकल करते समय लेखक सावधान नहीं रहते थे, इससे मूल शब्द और वाक का अर्थ बदल जाता था। अतः अलवरनी का कहना था कि भारतीय समाज के सही स्वरूप को समझने के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन जरूरी है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति और इसका अर्थ, यह सब ईसा पूर्व 6वीं-5वीं शताब्दी में फारसी भाषा में सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्रों के लिए प्रयोग होता था। आगे चलकर अरबों ने इस क्षेत्र को अल हिंद एवं यहाँ के निवासियों को हिंदी नाम से संबोधित किया। बाद में तुर्कों ने सिंधु नदी के पूर्व रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास स्थान को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी कहा। ये सभी शब्द क्षेत्र विशेष और वहाँ के निवासियों को इंगित करते हैं। इस शब्द की धार्मिक पहचान बहुत बाद में बनी। हिंदू मुसलमानों में धार्मिक विभेद था। हिंदुओं की धार्मिक मान्यता एवं प्रथाएं मुसलमानों से भिन्न थी। हिंदू विदेशियों को मलेच्छ मानते थे, उनके साथ किसी प्रकार का सामाजिक संपर्क नहीं रहना चाहते थे। भारतीय अलवरनी संस्कृत में लिखे गए ग्रंथों भारतीय विद्वानों विज्ञान ही प्रगति की भी आलोचना करता है। इसके बावजूद भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए उसने वेद, पुराण, भगवद गीता, पतंजलि के महाभाष, मनुस्मृति और अन्य ग्रंथों का सहारा लिया। भारतीय विद्वानों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर वह भी अनेक जानकारी प्राप्त कर सका। अलवरनु भारतीय समाज की गहराई से जांच पड़ताल इसकी मुख्य विशेषताओं को वर्णन करता है। भारतीय समाज के समान फारसी समाज भी चार प्रमुख वर्गों में विभक्त था। शासक वर्ग और घुड़सवार, पुरोहित एवं चिकित्सक, खगोल शास्त्री एवं वैज्ञानिक, किसान और शिल्पी। भारतीय वन व्यवस्था के अनुसार इस समाज में चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावे वर्ण और जाति व्यवस्था के बाहर भी अनेक सामाजिक समूह थे जिन्हें अलवर्णी अत्यंज कहा करता था। आश्रम व्यवस्था हिंदुओं की समान सामाजिक स्थिति का वर्णन करने के अतिरिक्त अलवर्ण विभिन्न वर्णों और जातियों की सामाजिक स्थिति, खान पान, विवाह, पर्व त्योहार, शकून अपशकून, अंधविश्वास इत्यादि का विस्तार से उल्लेख करता है। ब्राह्मणों के लिए आश्रम व्यवस्था का पालन करना आवश्यक था। इसके अनुसार ब्राह्मणों का जीवन चार भागों में विभक्त था। अलवर्णी भारतीय समाज का वर्णन करते हुए सांस्कृतिक जीवन के अनेक पहलुओं को विवेचना करता है। उसके अनुसार मांसाहार का प्रचलन था, समान लोगों के लिए शराब पीना मना था, परंतु शूद्र शराब पी सकते थे। इस प्रकार अलवर्णी के वृत्तांत से भारत की समाज स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। उसने लगभग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया, परंतु कहीं कहीं वह महत्वपूर्ण तत्वों को उपेक्षा कर देता है। उदाहरण, अलवर्णी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का उल्लेख करते समय राजपूतों को उल्लेख नहीं करता है जो तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक जीवन के मुख्य नियंत्रक थे। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ कि उसने ब्राह्मण ग्रंथों को आधार बनाकर ही अपना वृत्तांत लिखा, वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास नहीं किया। इसी प्रकार अंतज सामाजिक दृष्टि से हीन होते भी धार्मिक जीवन में उपयोगी थे। इस तरह अलवर्णी का महत्व, यात्रा वृत्तांत का महत्व भारतीय दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनसे इनका वृत्तांत का महत्व बढ़ जाता है।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाएं नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।